6,06,000 डॉलर वाशिंगटन की सीरीज से चूहे ख़त्म करने के लिए। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद व्हाइट हाउस से चूहों का इखराज मुमकिन ना हो पाया।
हंसी की बात।
No, they have to live.
मतलब है कि आपने पूरे पूरे जितनी सिक्योरिटी लगाई भी है मगर चूहों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई आपने।
It's a good news. बहरहाल बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो हंसते बोलते रहना चाहते हैं। अ वंडरफुल मदर 4358। अच्छा जी सुनिए, एक शख्स ने अपनी बीवी के पास बड़ी परेशानी की हालत में आया और उसने अपनी बीवी से, बीवी उसकी ने पूछा, आदमी की आंखें लाल थीं, बाल खड़े हुए थे, रंग उसका पीला फक हुआ हुआ था। बीवी ने पूछा, आपको क्या हो गया? कहने लगा, बस बेगम, बादशाह ने हर शख्स के कत्ल का ऐलान कर दिया है। उसने कहा कि हर शख्स जो दूसरी शादी नहीं करेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो बीवी ने हंस के कहा कि माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको कितनी बड़ी सादत के लिए चुन लिया है और आपको अल्लाह ने शहादत के लिए चुन लिया है।
नॉट ओनली सादत बट शहादत भी है भाई। आप तो दूसरी शादी कर नहीं सकते तो है। एक कॉलर भी हमारे साथ है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम माजिद भाई, आरफा बाजी से बात करनी है।
ओ जानू मैं आरफा बाजी, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम सलाम। बस थोड़ी सी ये माजिद भाई की चुगली लगानी थी आपको।
जानू बताओ।
पिछले बुध को ये हुआ कि वही जो शुरू में जुनेद भाई ने बताई थी ना, ठुमरी और अजीबो गरीब किस्म के गाने, बस उस बुध के जले हुए थे। इस बुध को फिर टीवी लगाया तो माजिद भाई आपके साथ हैं, आज तो चूहों की कहानी शुरू हो गई। पिछले बुध के जले हुए अभी तक।
मैंने हफ्शी भाई को कह देना है और एक सैयद साहब है जिन्होंने वो गाने लगवाए थे मुझसे, मेरे पास तो नाम भी लिखे हुए उन लोगों के।
I love you, you're so sweet.
एक दिन ये हुआ आरफा बाजी के वो मैंने फोन किया तो आपका ये रेडियो लगाया, मैं गाड़ी चला रही थी तो उसमें सारे सिर्फ गाने ही आ रहे थे और बहुत अच्छे गाने थे। तो थोड़ी देर बाद जब ये माजिद भाई की आवाज आई तो मैंने इनको फोन किया, पूछा क्या हुआ? माजिद भाई कहते आज हमारी बत्ती चली गई थी। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक है, ये तो अक्सर जानी चाहिए। जल के ना।
अच्छा अब जो है ना वो शिकायत डिपार्टमेंट जो है ना वो 5 बजे बंद हो जाता है, 5:02 हो गए।
नहीं हमारी बाती आ गई है ना तो आप किया था ना तो वो तो मौजूद है तो हम तो फिर उन्हीं का इंतजार कर रहे थे।
आई लव यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, सच अ लवली,
बहुत शुक्रिया आपका।
ये जो मैंने आज आपको डाउन टाउन का भी वाक्या सुनाया ना, और मैंने आपके साथ मंडे को शेयर किया था एक बड़ी दुख की खबर, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का चौथा वाकया हुआ है। बैन सेंटर आईटी का बच्चा 24 साल इसकी उम्र, इस बच्चे ने ऊपर से छलांग लगा के खुदकुशी कर ली। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और चंद और यूनिवर्सिटीज़ में बेशुमार इस तरह के वाक्य होते हैं, इन खबरों को सरफेस ही नहीं होने दिया जाता, सरफेस ही नहीं होने दिया जाता। और आप इमेजिन कीजिए ये बच्चे ने जब ऊपर से छलांग लगाई, सर के बल ये गिरता है और इसके सर से जब खून निकलता है, इर्द गिर्द जिन बच्चों ने इसकी डेड बॉडी को देखा, ब्लड को देखा, वो बच्चे जिस ट्रॉमा में से गुजर रहे हैं, दैट इज़ अनबिलीवेबल। इस इमारत को खाली करवा लिया गया, जो बच्चे इस इमारत में रहते थे, जो खाली कराया गया, जिस वजह से खाली कराया, वो बच्चे अपनी जगह से ट्रॉमा का शिकार हैं। यूनिवर्सिटीज ऑफ टोरंटो जो है वो ये कह रही है, और ये बच्चा वॉज अ वेरी टैलेंटेड ब्राइट बच्चा, आईटी प्रोफेशन से इसका ताल्लुक था। वो बच्चे भी ट्रॉमा का शिकार हैं सारे के सारे, मगर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो पहली प्रेफरेंस उनकी ये है कि वो बच्चे जिन्होंने इस बच्चे की खुदकुशी के बाद, यानी इसने जब सुसाइड अटेम्प्ट करके ऊपर से नीचे सुसाइड किया था, जिन्होंने इसकी डेड बॉडी को देखा था, जिन्होंने उस ब्लड को लेटर ऑन देखा था, उन बच्चों को फौरी तौर पर वेलनेस सेंटर आने का कहा जा रहा है, उनकी काउंसलिंग की जा रही है, क्योंकि इन बच्चों पर भी आफ्टर इफेक्ट इसके होंगे ज़रूर। यहाँ के बच्चे जिस स्ट्रेस में से, जिस प्रेशर में से गुजरते हैं, दैट इज़ क्वाइट अनबिलीवेबल। और मैंने कल ही 2-3 वाक्यात देखे, वी बीइंग पेरेंट्स भी बच्चों को प्रेशर डालते हैं, ٹھیک ہے میرے جیسی مائیں بے شمار ہوں گی, میرے بہت سارے باپ ایسے ہوں گے جو ہم بچے کو خواہ مخواہ کے پریشرز میں ڈالتے ہیں. وہ بچے جو اپنے ماں باپ کے سامنے تو آپ کی مرضی کا لباس پہن کے نکل لیتے ہیں اور اسکول اور یونیورسٹی کے باتھ رومس میں جا کے اپنے لباس کو تبدیل کر کے اس معاشرے کے لیے لباس پہنتے ہیں, وہ بچے کسی کم پریشر میں سے نہیں ہیں. تو اس لیے وی اینڈ یو, وی شوڈ ڈیفینیٹلی چینج آر سیلف اکارڈنگ ٹو ایدر وی ہیو ٹو سیٹ اے رول ماڈل, سیٹ آر سیلف ایز رول ماڈل ان فرنٹ آف دیم, تاکہ بچے اس ڈپریشن میں سے, اس پیئر پریشر میں سے گزرے ہی نہ. ادروائز مینٹل النس جتنی کامن ہے, اس کو آپ میری بات کو نظر انداز مت کیجیے گا, پلیز اس بات کو نظر انداز مت کیجیے گا. مینٹل پریشرز, اسٹریس, ڈپریشن, دے لیڈ ٹو سچویشنز جہاں بچے روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں,
مینٹل ہیلتھ کی طرف
ضرور مینٹل ہیلتھ کی طرف بڑھتے ہیں. یس, بے شمار ایجنسیز ہیں جو ان پہ کام کرتی ہیں. مطلب اگر ہم نے آپ نے اپنا مستقبل گنوا دیا تو مجھے کیا لگے کسی ایجنسی کا. ان ایجنسیز میں آف کورس ہم ہیلپ کے لیے جاتے ہیں, مگر ایک بچہ جو ڈرگ میں چلا گیا ہے وہ ماں باپ کی بات ہی نہیں سنے گا, وہ کیوں جائے گا کاؤنسلنگ کے لیے؟ اٹ ول بی ڈیفیکلٹ. 18 سال کے بعد تو ویسے بھی آپ ایون آپ کا آئی ہیو کم اکراس ایون پیرنٹس کہ 16 سال کا بچہ ہے اور پولیس کو پتہ بھی چل گیا کہ وہ بچہ اب کہاں پہ رہ رہا ہے, مگر وہ پیرنٹس کو نہیں بتاتے کہ ہی از این ایڈلٹ, ہی کین ٹیک ہز اون لائف ڈیسیشنز. اگر وہ کہیں اور رہ رہا ہے تو وہاں پر بھی وہ اپنی, بیکاز ماں باپ کے ساتھ اسی نہیں رہ سکتا کہ ہی وانٹ ٹو کیری آن ود ہز بیڈ ہیبٹس. چند ایک اسپانسرز کا پیغام, ول کم بیک. اسٹوڈیو کا نمبر 416-620-1778.
اس رویوار دوپہر 1 بجے فیڈرل آکشن ایک شاندار برائڈل جیولری آکشن کرنے جا رہا ہے. 1 سے 4 کیرٹ کی ڈائمنڈ انگیجمنٹ رنگز, 22 کیرٹ گولڈ, ایمرلڈ اور روبی سیٹس پر ڈیلز پائیے اور لیجیے اپنی من پسند برائٹلنگ, اومیگا اور کارٹیئر گھڑیاں. بلز آن رولیکس واچز اینڈ 1 کیرٹ ڈائمنڈ رنگز سٹارٹ فرام $4,000 اینڈ 2 کیرٹ ڈائمنڈ ایئر رنگز فرام اونلی 8,000. صرف اس رویوار دوپہر 1 بجے گرینڈ وکٹورین کنوینشن سینٹر ایٹ پارک ان بائی ریڈیسن, 175 ڈیری روڈ ایسٹ, مسساگا. فیڈرل آکشن .ce/مسساگا.
Adnan Bashir of Cityscape and Buzzmax.ca present Living Legend Ustad Rohak Fateh Ali Khan live in concert. On Friday, October 18th, 2019 at Roy Thompson Hall, Toronto. For tickets and sponsorships, call 416-989-8555 or visit roythompsonhall.com. Another mega event by Digital Media Limited and Hum Television Network.
نہ خرید فرنیچر راستے سے, نہ لینا سوٹ ڈالر مارٹ سے, نہ پینا باسی کافی اچھا لگتا نہیں, نہ بناؤ انٹرن کو سی ای او, نہ کھلاؤ فاسٹ فوڈ کلائنٹ کو, نہ لگاؤ مسکا باس کو, اچھا لگتا نہیں. ہمیں ملتا ہے وہی جو ہم چاہتے ہیں, یوز اوریجنل ایچ پی ٹونر, ہر چنتا ہوگی دور.
100% ریلائبل, انوائرمنٹلی ریسپانسبل, آلویز ٹرسٹ اوریجنل ایچ پی ٹونر.
Oriental costumes, انتہائی خوبصورت اور جدید لباس کے لیے Oriental costume, excellent selection of designer outfits, jewelries, kursas, bangles and much much more. Bridal collection and sherwanis pe up to 60% off, selected jewelries up to 40% off, the best in town, that is Oriental costume. Must visit 3180 Ridgeway Drive in Mississauga. Oriental costume, 905-569-1515. 569-1515. Oriental costume.
روجر کی بیسٹ پرائز اور پروموشن کے لیے کانٹیکٹ کریں وقار خان, جو روجر کی امپلائی ہیں اور 13 سال سے زیادہ تجربہ. روجر کی 3 سروسز کا بنڈل آفر, جس میں ٹی وی ود ایچ ڈی ریسیور, ہائی سپیڈ انٹرنیٹ, وائرلیس وائی فائی موڈم, فون کال ود لوکل کالنگ, لانگ ڈسٹینس بھی موجود, جس میں انلمیٹڈ یو ایس کینیڈا کالنگ اور پاکستان کے 930 منٹ. ٹی وی, فون, انٹرنیٹ اور روجر کی لیٹسٹ ہوم سیکورٹی ڈیلز کے لیے رابطہ کریں وقار خان, 647-864-8000, 647-864-8000. खुशखबरी, ब्रैम्पटन वेस्ट, मिसिसागा और मिल्टन के लोगों के लिए डेंटिस्ट डॉक्टर नाजिया रहमान की सेकेंड लोकेशन अब खुल चुकी है। फैमिली कॉस्मेटिक, ब्रेसेस, इम्प्लांट्स, क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग, क्राउन ब्रिजेस एंड लेजर टीथ व्हाइटनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव डेंटल केयर, मॉर्निंग, इवनिंग एंड सेम डे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स, डायरेक्ट बिलिंग टू इंश्योरेंस एंड ईजी पेमेंट ऑप्शंस, ODSP एंड हेल्दी स्माइल एक्सेप्टेड एट डेंटिस्ट्री ऑफ मिसिसागा। न्यू पेशेंट्स वेलकम। फॉर फ्री कंसल्टेशन please call dentist Dr. Nazia Rehman 905-872-1100-905-872-1100.
हैदराबादियों के बनाए हुए असली हैदराबादी खाने at Bakes Grill,
जिसके खाने पे आ गया दिल। Bakes Grill, the taste that thrills. Bakes Grill,
खुद के पीसे हुए खालिस मसालों से बने लजीज हैदराबादी खाने एट बेक्स ग्रिल, लुखमी चिकन 65 और हैदराबादी बिरयानी का तो हेड ऑफिस।
धूम मचा दी खाना हैदराबादी बेक्स ग्रिल,
124 केनेडी रोड इन ब्रैम्पटन, 905-230-3243।
खाना हो तो आ जाओ शाहीन टिक्का और कबाब।
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब बिरयानी दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, माउथ वाटरिंग कबाब एंड सिजलिंग बारबेक्यू आइटम।
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। जी हाँ, 416-570-0157।
दांतों को लेके परेशान तो मैं कर देती हूँ आपकी मुश्किल आसान। फैमिली डेंटिस्ट्री में एक्सपर्ट डॉक्टर गजाला जैद से मिलिए, अ ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया फ्रॉम अमेरिका, एक्सट्रीमली पोलाइट एंड कंफर्टेबल विद ऑल एज ग्रुप्स। अब बताइए अपना मसला इंग्लिश, उर्दू या हिंदी में।
बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ एट 416-945-1000, 416-945-1000 एंड विजिट सीडर ब्रे मेडिकल सेंटर एट 3630 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, स्कारब्रो। अपने दांतों का करवाएं इलाज डेंटिस्ट डॉक्टर गजाला के साथ।
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स, LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 905-455-1666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
कुछ पल इंसान की जिंदगी में पहली बार आते हैं, इसीलिए आप सिर्फ उन लम्हों को जिए, बाकी हम पर छोड़ दें। 20 साल का वसीत तजर्बा लिए हम हैं वुडबाइन बैंक्वेट एंड कन्वेंशनल हॉल, शानदार इंटीरियर, लार्ज हॉल्स, स्टेट ऑफ द आर्ट गेस्ट रूम्स और एक्सपर्ट शेफ्स का अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। बनाए आपके हर लम्हे को हमेशा यादगार। वुडबाइन बैंक्वेट हॉल, 30 Y Regent Boulevard, टोरंटो। बुकिंग और रिजर्वेशन के लिए अभी कॉल करें 416-743-0003।
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों, एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स, मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 905-848-7000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
जी साहब, व्हाइट हाउस में चूहा निकला और चूहा व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग में एंटर हो गया। आई डोंट नो उसके पास। देखिए साहब, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तो आपको वीज़ा चाहिए होता है, ठीक, मगर ये चूहा व्हाइट हाउस में कैसे आया आप इमेजिन कर लें। और गिरा भी कहाँ, एक सहाफ़ी की गोद में गिर गया, ठीक है, पीटर अलेक्जेंडर उनका नाम है, सहाफ़ी जिनकी गोद में ये चूहा गिरता है, और चूहा पीटर अलेक्जेंडर की गोद में गिरा, उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग तो बीच में धरी की धरी रह गई। आप उसके
I have seen those clips.
आप उस सहाफ़ी, आप सारे के सारे जितने सहाफ़ी थे, दे वर रनिंग आफ्टर चूहा, ऑल सहाफीज, और ये सहाफी, मैं आम सहाफियों की बात नहीं कर रही, अमेरिका के व्हाइट हाउस के सहाफी जिनको व्हाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग में एक्सेस है, और चूहा भी इतना खबीस किसी आम आदमी की गोद में नहीं गिरा, गिरा भी किसकी गोद में, पीटर अलेक्जेंडर की। हम आपको लेके चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में, हमारे साथ क्रिकेट के जनाब डॉक्टर अदनान, और सीरीज़ वनडे सीरीज़ को 2-0 से जीता पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि डिफरेंट कंट्रीज़ पाकिस्तान में आएं और आके खेलें, आपको पूरी की पूरी सहूलत फ्राहम की जाएगी।
2-0
पीटर अलेक्जेंडर NBC के सहाफ़ी हैं, और आप सोचिए चूहा भी कोई आम सा चूहा नहीं, बादशाही घर से ताल्लुक़ रखता था और ये सहाफ़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता
डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम माजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम आरफा आपा और सभी सुनने वालों को डॉक्टर अदनान का सलाम।
जी डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम, ये बड़ी कमाल की खबर है आपको जो मैंने गया, व्हाइट हाउस में चूहा पीटर अलेक्जेंडर की गोदी में गिरा छत से और आप इमेजिन करें, यानी व्हाट अनऑर्गेनाइज्ड कंट्री, जहाँ पे बस में चढ़ना हो या आपने अपनी जान बचानी हो, आप एक क्यू में खड़े होते हैं लाइन में, मगर वो प्रेस ब्रीफिंग तो बीच में रह गई, वाइट हाउस में जितने सहाफ़ी थे, ये पीटर अलेक्जेंडर कोई आम सा सहाफ़ी नहीं है, वाइट हाउस में NBC न्यूज़ को कवर करते हैं, और चूहा इनकी गोदी में गिर गया।
जी बिल्कुल, कुछ ऐसी खबरें जो है वो दुनिया भर में जो है कुछ हैरान कन, ऐसे जिस तरह आपने कहा कि चूहे ने बड़ा सही बंदा चुना, तो ऐसे ही क्रिकेट के मैदान में अगर आप देखें तो आज तक कभी आपने हिस्ट्री में नहीं सुना होगा कि नेशनल स्टेडियम कराची का मैच जो है वो बारिश की वजह से अबैंडन हो जाए। तो ऐसी अनहोनियां ही इस दुनिया में हो रही है आजकल कि एक मैच जो है वो कैंसिल हो गया नेशनल स्टेडियम कराची में, चूहा यहाँ व्हाइट हाउस में जो मकरूब आदमी था उसकी गोद में गिर गया। दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग ओवर इन द वर्ल्ड। तो चलते हैं क्रिकेट की जाने, आपको बताते चलिए सुनने वालों को अरफापा के, सबसे पहले तो पाकिस्तानी फैंस जो है उनको मुबारकबाद, काफी रिलीव्ड होंगे और खुश होंगे कि क्रिकेट इज कमिंग बैक टू द होम और क्रिकेट हैज बीन रीस्टार्टेड इन द पाकिस्तान आफ्टर अ ड्रॉट 11 ईयर्स, 10 ईयर्स का जो एक बड़ा तवील अरसा था 2009 के अटैक के बाद पाकिस्तान में माशाल्लाह अब आगाज हो चुका है। आइंदा जिस तरह आपने कहा कि बाकी टीमें भी जो है वो हम दुआगू हैं कि वो आए, और इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया की टीम जो जायजा लेके गई है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इसके बाद दौरा करेगी अगले साल जब मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल बता चलूँ आपको कि ये जो थ्री मैच सीरीज थी, इसका पहला मैच तो आपको पता ही है कि अनहोनी हुई और बारिश की वजह से नेशनल स्टेडियम कराची में मैच जो है वो नहीं हो सका। बाकी दो मैचेस थे पाकिस्तान ने, उसमें श्रीलंका को क्लीन स्वीप कर दिया और पहला मैच पाकिस्तान 67 रन से जीता, जबकि दूसरे में जो है 5 विकेटों से पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। लेकिन जो पहला मैच था थोड़ा सा बताते चलूँ आपको उसका, कि उसमें जो काबिल जिक्र बात थी वो थी उस्मान शिनवारी का 5 विकेट्स जो उन्होंने ली एक डेड ट्रैक के ऊपर। ये बड़ा एक पाकिस्तान के लिए खुशगवार हवा का झोंका था कि डेड विकेट्स के ऊपर 5 विकेट लेना, और जब पाकिस्तानी पेसर्स पिछले 25 या 26 गेम्स के अंदर हमने देखा है कि अभी तक कोई मैन ऑफ द मैच नहीं हुआ, अमूमन बैटिंग साइड से या स्पिनर ऑलराउंडर या विकेट कीपर लेते जाता है जो मैन ऑफ द मैच है, तो उनको मैन ऑफ द मैच मिलना एक अच्छा एक खुशगवार एक याद है पाकिस्तान की, कि एक टाइम था 90s में जब वसीम अकरम वकार जूनियर या शोएब अख्तर उसके बाद 2000 के अंदर और लेट 90s में लगातार मैन ऑफ द मैचेस का हिस्सा बनते थे, लेकिन अब पाकिस्तानी पेसर का दोबारा इसमें शामिल होना बड़ा अच्छा था। तो तीसरा जो मैच हुआ उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, जो आज पाकिस्तान ने 5 विकेटों से जीता। बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान का मजबूत असासा, आज भी अच्छा खेले, बदकिस्मती से आज वो स्कोर हाई स्कोर ना कर सके, लेकिन तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर आबिद अली की। आबिद अली जिनको साथ ले जाया गया था, काफी उन पर बातचीत थी, चर्चा जारी था कि उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, उनको फिर आयरलैंड में रहने की इजाजत भी दी गई कि वो मैचेस खेलते रहे, अगर कोई जख्मी होता है खिलाड़ी तो उनको बुला लिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान जो आखिरी मैच वर्ल्ड कप का हारा था उसे एक हफ्ता पहले आबिद अली को वापस भेज दिया गया था, जिसमें काफी जैम गोलियां हो रही थी, तो वो अब ज्यादा सर पकड़ने लगी है जब से आबिद अली ने स्कोरिंग की है। तो आबिद अली ने बड़ा अच्छा स्कोर किया और उन्होंने 71 रन बनाए, और उसमें लेकिन वो उनके रन बनाना खास बात नहीं थी, जिस स्पीड से उन्होंने बनाए दैट वॉज वो काबिले तारीफ था, जिस तरह से उन्होंने रन बनाए। दोनों 50s बनाई, पार्टनर जो ओपनिंग पार्टनर थे उनके फखर जो है वो पहले ही फॉर्म में आ चुके हैं, पिछले मैच में भी 50 कर चुके हैं, तो 100 रन की कामयाब पार्टनरशिप हुई ओपनर के दरमियान, तो 299 रन का बड़ा टारगेट था। तो वो पाकिस्तान ने बेसिकली स्टेबलाइज किया उसको, और अच्छा स्टेबलाइज किया। लहरू थरमाने जो है वो काफी बेबस नजर आ रहे थे मुझे, मैं उनको फील्ड में देख रहा था, लेकिन उन्होंने पोस्ट मैच जो बयान है वो बड़े अच्छे दिए। उन्होंने दूसरी टीमों को अंदिया दिया है कि पाकिस्तान जो है बड़ा सेफ कंट्री है, आप सब लोग मैच खेलने आए। इसी तरह मिसबाह उल हक भी बड़े खुश हैं कि सीरीज के कामयाब इस इख्तिताम के ऊपर। और तीसरी बात जो है बाबर आजम के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि बाबर की जो अब अचीवमेंट्स है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, काफी मुवाजना किया जा रहा है पाकिस्तानी बाबर आजम का और भारतीय विराट कोहली का। तो इन दोनों के दरमियान जो पहली 1200 का मुकाबला किया जा रहा है उसमें 82 मैच खेलने के बाद विराट कोहली जो है वो इस मुकाम पे पहुंचे थे, जबकि बाबर आजम ने ये टारगेट जो है वो 71 मैचेस में पूरा किया है और इवन पाकिस्तान से बाहर खेलते हुए, जबकि विराट को ये मैचेस जो है वो इंडिया की सरजमीन पे मिले हैं। इसी तरह अगर ओवरऑल मैं जाऊं जो बाबर आजम का रिकॉर्ड है सक्सेसफुल चेजेस ODI के अंदर, तो वहां पर ऑब्वियसली विराट कोहली टॉप पे है 5214 रन के साथ, लेकिन बाबर आजम जो है वो 19 इनिंग्स में जो सक्सेसफुल चेज है 775 रन, 70.45 की एवरेज और स्ट्राइक रेट ऑफ 77.81, तो ये बड़ा एक मैग्निफिसेंट रिकॉर्ड है। तो दिस शुड गो अलॉन्ग, और आई होप कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है जिसके बारे में बैटिंग बहुत बड़ी मशहूर है हमारी की जब कोलैप्स ट्रिगर होती हैं, तो आई थिंक ये जो बैटिंग कंसल्टेंट होंगे उनको बड़ा रिलीफ मिलेगा इस अप्रोच के साथ।
और साहब अगर आप श्रीलंका की बैट्समैन को देखें तो श्रीलंका का बैट्समैन गुणाथलका उसने भी अच्छी बैटिंग की।
जी श्रीलंका के बैट्समैन ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, बिल्कुल वहां से भी सेंचुरी दागी है बड़ी जबरदस्त, और जब भी उनका जो बैटिंग जिनका वॉल्यूम है जो बड़ा और रन जो है वो 299 का पाकिस्तान को टारगेट मिला, ऑब्वियसली अगर वो सेंचुरी ना होती तो श्रीलंका इतना बड़ा महाज इकट्ठा ना कर सकता पाकिस्तान के लिए। लेकिन मसला वही है ना कि जंग जो है वो दोनों तरफ से लड़ी जाती है। पाकिस्तान वॉज गुड इन द बॉलिंग, वहां पर मोहम्मद आमिर ने भी विकेटें ली, स्टेबल किया इनिंग्स को और उनको रोके रखा, वरना अगर स्कोर 350 हो जाता या 370-360 तो फिर पाकिस्तान के हाथ से निकल जाता। अब श्रीलंका को जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि उनके बैट्समैन जो है वो वहां स्कोर कर गए, वहां पर सेंचुरी भी लग गई, लेकिन अब बॉलिंग डेप्थ उनके पास नहीं थी। बॉलिंग डेप्थ पे प्रदाप ने कुछ कोशिश की लेकिन उनसे कंट्रोल उनके बस से बाहर थी, जिस हिसाब से आबिद अली बैटिंग कर रहे थे। देखिए ये भी देखें कि पहला ओवर मेडन गया, उसके बाद आबिद अली को सिर्फ 2 रन बनाने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद जब ही ट्राइड टू कट लूज फिर देर वॉज नथिंग इन द डिफेंस ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका उनको फिर रोक नहीं सका। अब वहां पर विकेट टेकिंग बॉलर की शिद्दत से इनको कमी मुझे महसूस हुई कि यहां पर अगर मलिंगा होते तो दूसरा बॉलर होता तो शायद तस्वीर जो है वो मुख्तलिफ होती, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गया है कि मलिंगा जो है वो रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, और इसके अलावा जो अकीला है उनके की बॉलर जो मलिंगा की गैर मौजूदगी में जो एक सरा संभालते थे उनके ऊपर बैन लग चुका है। तो अब इस बैन की वजह से और मलिंगा की रिटायरमेंट की वजह से अब इनको देखना होगा कि इनका ट्रंप कार्ड जो है वो बॉलिंग में कौन होगा जो अपोजिशन के रन को रोक सके, क्योंकि यहां पर उनको एक ट्रंप कार्ड चाहिए था जिसकी सख्ती से कमी महसूस हुई और पाकिस्तानी बैट्समैनों के सामने वो टोटल बेबस नजर आया। अब ये देखें कि आबिद अली जो है उन्होंने अपने 70s में जो रन बनाए हैं उसमें से उन्होंने 60 रन अपने लेग साइड पे बनाए हैं, लेकिन लेग साइड पे कोई तोड़ नहीं उनको नजर आ रहा था। इसी तरह फखर ने अपने जो 41 रन आउट ऑफ 70 स्कोर किए हैं वो ऑफ साइड पे किए हैं, ही वाज प्लेइंग ऑन ऑफ एंड आबिद वाज प्लेइंग ऑन लेग साइड। तो ये सारा रोकथाम के लिए श्रीलंका का कप्तान जो थे बिल्कुल बेबस नजर आए, और मुझे लग रहा था कि बिल्कुल विदाउट प्लानिंग है। तो उनके जो बैट्समैन थे जिन्होंने 100 किया समझे कि उसकी मेहनत पे उनकी पानी फिर गया, कोई उसका असर नहीं रहा। जब आपकी कैप्टेंसी अच्छी ना हो, जब बॉलिंग अच्छी ना हो, उन्हें इतने रन डिफेंड करने के लिए सपोर्ट चाहिए बॉलिंग एंड की, जो अनफॉर्चुनेटली आज उनके पास नहीं।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान, मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक मैच बारिश की नजर हुआ, 2-0 से पाकिस्तान ने जीता। अगली जो सीरीज है दैट इज इन लाहौर, 3 मैचेस होंगे और ये 3-day मैच ईच होगा।
बिल्कुल जी, अब जो ये T20 मैचेस होंगे ये सब लाहौर में खेले जाएंगे, कदाफ स्टेडियम में यहाँ पर देखेंगे। अब काफी अरसे के बाद जिम्बाब्वे की टीम के जाने के बाद अब यहाँ पर लाहौर को मैचेस मिलेंगे, तो मुझे जो लगता है स्ट्रेट फॉरवर्डली इन मैचेस का रिजल्ट इट शुड बी 3-0। जिस तरह के मैंने अभी ये मैचेस देखे तो ये पाकिस्तान के हाथ में जा रही है, कोई वजह नहीं दिखती कि पाकिस्तान इसको क्लीन स्वीप ना कर सके, क्योंकि पाकिस्तान इज ऑलरेडी गुड इन दिस फॉर्मेट इन द T20 और जो टीम है वो भी बड़ी स्ट्रांग उतारने लगे हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान विल गो ऑल द वे। और यहां पर अब जो चीज सामने नजर आ रही है मुझे वो ये आ रही है कि अब यहां पर मिसबाह उल हक को चाहिए कि अब यहां नए लड़कों को चांस दें, अगर नए लड़कों को चांस नहीं देते तो इसके बाद शायद उनको आगे ऑस्ट्रेलिया जाना है, पाकिस्तान ने फिर कोई टाइम नहीं मिलेगा पाकिस्तान को T20 में ट्राई करने का। अगर आपने करना है ट्राई विकेट कीपर को, सरफराज जिस तरह फॉर्म में नहीं है तो आप रिजवान को यहां ट्राई कर सकते हैं, इफ्तिखार अहमद जो कराची किंग्स का हिस्सा है काफी वो अच्छा खेलती है 5 और 6 नंबर पे आके, इसके अलावा वो स्पिन भी करते हैं, ही कुड हैव बीन गुड अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर, उनकी जो ऑफ स्पिन होगी अगेंस्ट द लेफ्ट हैंड तो ये बड़े कारगर वार हो सकते हैं। हसनैन इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूंगा, फास्ट बॉलर जो है उनको वर्ल्ड कप में भी मौका नहीं मिला, अभी भी मौका नहीं मिला, अब उनको पूरे आज 10 मैच हो गए हैं पानी और टॉवल उठाए हुए।
इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, वी विश ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान एंड वी कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, इट्स अ गुड चांस फॉर पाकिस्तान। देखिए बहुत सारी र्यूमर्स थी कि श्रीलंकन टीम पाकिस्तान जा नहीं पाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह और खुदा करे कि ये मैच बखैरियत हो, आफियत मुकम्मल हो और ये टीमें खैरियत से अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान का मैच पॉइंट आप टेलीविजन पे देखिए, बहुत कमाल का प्रोग्राम हुआ करता है। लॉयल मनी एक्सचेंज की ताबून से एक और बड़ी प्यारी खबर की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। अ वंडरफुल ब्रदर ऑफ माइंड, प्रोफेशनली ही इज एन अकाउंटेंट, माशाल्लाह वेरी वेल सेटल्ड, अपने बच्चों की बहुत बेहतरीन तरबियत की, सैयद इमाम इनका नाम है, वो भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। यू नो व्हाट, दीज आर थिंग्स जो कि एक लिहाज से बहुत अच्छी हैं, बाज़ औक़ात हम अपने छोटे छोटे मुशाहदात शेयर करते हैं तो वो दो घड़ी के लिए लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट भी ले आते हैं और दुनिया में ये अनहोनी चीज़ें होती रहती हैं। ये जो कॉल मैं लेने लगी हूँ ये लॉयल एक्सचेंज के ताबून से, मनी ट्रांसफ़र है लॉयल मनी एक्सचेंज, आपका कैश पिकअप भी करते हैं, आप बैंक डिपॉजिट कर सकते हैं, वायर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिलायबल हैं, फास्ट हैं, रकम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश अगर आपने भिजवानी है तो इस्माइल इब्राहिम से रब्ता कीजिए। लॉयल एक्सचेंज इनका नाम है, नंबर है, नाम है और इनका नंबर है 416-837-2675-837-2675। अ वंडरफुल ब्रदर ऑफ माइंड हैज सेंट वन क्लिप, इट्स ब्यूटीफुल क्लिप, इनका नंबर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, 67 समथिंग इस भाई का नंबर है जिसने एक क्लिप को शेयर किया है। और मैंने इस क्लिप से क्या लर्न किया है, मैंने इससे ये लर्न किया है, कमज़ोरियाँ हम सब में हुआ करती हैं मगर अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो वी कैन ओवरकम आर वीकनेसेस। 6712 ने भिजवाया, ये जंगल में शूट हुआ है और जंगल में शूट क्या हुआ है आपको पता है कि शेर या ये जितने जंगली जानवर हैं जब ये अटैक करते हैं तो ये एक जानवर को जब देखते हैं तो वहाँ अटैक करते हैं, तो एक बछड़ा या एक छोटा जानवर जब आया तो शेर ने उसके ऊपर अटैक कर लिया, जानवर को उसने उसकी सर की तरफ से नहीं आता, ये जो मेंढे या ये जो बफलोज होते हैं इनके दुम की तरफ से आके शेर अटैक करता है, तो इसने अटैक उस जानवर के ऊपर किया और उसको पिछली टांगों पे आके उसका वार किया, उसकी दुम के पास आके वार किया और आपको शेर से कौन बचे, उसके पंजे भी बहुत तेज़ हैं, उसके दांत भी बहुत तेज़ हैं। खैर ये जानवर लड़खड़ा गया, उसके बाद शेर ने दोबारा इसको इसके ऊपर एक और वार किया तो ये जानवर अपनी पिछली टांगों के बार गिरता भी है, मगर उस जो जत्थे के बाकी लोग थे, एंड दिस इज़ अ रियल और ये इंसानों के ऊपर कितनी लागू होती है, अनफॉर्चुनेटली वी द ह्यूमन बींग्स आर फॉरगेटिंग दीज वैल्यूज, जानवरों ने जंगल में इन वैल्यूज को अपना लिया, तो वो जो एक और पूरा गौल का एक जो बड़ा सारा मेंढा था, यानी बड़ा सारा क्या कहते हैं
लीडर जो था,
लीडर भी नहीं आप कह सकते, जो भी कोई था जिसके सींग बड़े बड़े थे, वो जनाब दौड़ता हुआ आया और ये जो शेर इस बछड़े पे अटैक जिसने किया था, और बछड़ा अल्टीमेटली अपनी पिछली दो टांगों पे गिर गया था, उसने इस शेर को अपने अगले दो सींगों के ऊपर उठाया और हवा में लहरा के एक दफ़ा, दो दफ़ा, पांच दफ़ा फेंका। मेरा ख्याल है शेर तो गार में बैठ कर अपने ज़ख्म से ला रहा होगा। उसके बाद उसने उस बिछड़े को आज़ाद करा लिया, और ये मेल मेंबर ऑफ द फैमिली था जिसके सींग इतने बड़े बड़े थे। ये है यूनिटी का एक। देर आर वेरी मैनी पीपल जो बाज़ औक़ात अपनी पार्टीज़ के लिहाज से या अपनी पर्सनल बेनिफिट्स के लिहाज से अपनी कौम को नीचे गिराते हैं। ये वीडियो पैगाम है उन तमाम के लिए। आई विल सेंड टू सम ऑफ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इफ़ आई कुड कॉपी दिस। सैयद इमाम मेरे साथ है। मैंने आपके साथ खबर शेयर की कि वाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, एंड यू कैन इमेजिन कि कितनी सोफिस्टिकेटेड जगह है वो वाइट हाउस। यानी आप नाम सोच के ही, दुनिया जहान की ताकतवर तरीन जगह वाइट हाउस, और वाइट हाउस जहाँ प्रेसिडेंट खुद ठहरता भी है, और वाइट हाउस का भी वो हिस्सा जहाँ पे सहाफ़ी बैठे हुए हैं, और हर सहाफ़ी के हाथ में कैमरा है, और हर सहाफ़ी इस कैमरे को लेके किसी न किसी वीक पॉइंट को पिक्चर करने के लिए तैयार है। ठीक है, और चूहा बेचारा सीलिंग से गिरता है, और गिरता भी बड़े ताकतवर इंसान की गोद में है जो कि एनबीसी न्यूज़ के कोरेस्पोंडेंट हैं। नाम है इनका अलेक्जेंडर, और ये जनाब पीटर अलेक्जेंडर इनका नाम है, उनकी गोदी में गिरता। पीटर अलेक्जेंडर तो चीख मार के उठते ही उठते हैं, मगर उसके बाद उन जितने सहाफ़ी प्रेस ब्रीफिंग को अटेंड कर रहे थे, मेरे पास वो सारी पिक्चर्स हैं। आई विश आई कैन सेंड यू दोज पिक्चर्स कि क्या क्योस था, और किस तरह से सारे के सारे सहाफ़ी उसके बाद भाग रहे थे वो तस्वीरें उतारने के लिए चूहे की। ये चूहे के वाक्य से हमारे एक भाई हैं सैयद इमाम, उन्होंने एक वाक्य शेयर किया। आपको पता है कि जब हम इसराइल के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इसराइल माशाल्लाह वहाँ सिक्योरिटी सिस्टम यू कैन इमेजिन। और माजिद भाई, ये जो जानवर हैं, चाहे वो कबूतर हों, चाहे वो जंगली जानवर हों, इनके लिए तो कोई सरहद नहीं है ना, इनकी तो अपनी टेरिटरीज हैं, दे ट्रैवल आराम से। सैयद इमाम मेरे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। इमाम भाई, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस जो आप शेयर कर रहे हैं। माजी भाई, आप इसको सुनिए जी, क्या हुआ 2014 में आपने ट्रैवल किया और आप मस्जिद अक्सा जाना चाह रहे थे।
जी जी, 2014 में ऐसा हुआ कि पार्कलैंड सर्विसेज एक ट्रेवल एजेंसी है मिसागा में, उन्होंने पहला बार में स्टार दिया कि फर्स्ट टाइम अब ये जो यरूशलम का जो टूर होगा ये डायरेक्ट होगा, नॉट वाया अमान। इसलिए कि वाया अमान अगर आप जाएं तो वो रोड सर्विस पाँच घंटे लगते हैं और बहुत वो टायरसम जर्नी है। ये आप इस्तांबुल से डायरेक्ट पहुँचते हैं तेल अवीव, और तेल अवीव से बाई कोच डेढ़ घंटे में आप पहुँच जाते हैं मस्जिद अक्सा। तो ये सूरत हाल थी, तो हम जनाब इस्तांबुल से फ्लाई करके वहाँ पहुँच गए तेलाविव एयरपोर्ट पे, और तेलाविव एयरपोर्ट पे नॉर्मल इमिग्रेशन वगैरह के बाद हमारे 22 बंदों का ग्रुप था। 22 में से हमने चार जो कुछ यंग किस्म के लोग थे उनको उन्होंने थोड़ा देर के लिए रोक लिया, कहा कि इनसे फर्दर क्वेश्चनिंग करेंगे। अब उसकी वजह से पूरे ग्रुप को वहां बैठ के एयरपोर्ट पे लॉन्च में इंतजार करना पड़ा कि वो जब आ जाए तो सब इकट्ठे बाई बस हम लोग यरूशलम की तरफ सफर करेंगे। मगर वो ऐसा हुआ कि इस दौरान मैं टहल रहा था इधर उधर, तो जब मेन एंट्रेंस है वहां से एक छोटा सा चूहा वो दाखिल हुआ। अब इत्तेफाक से उस वक्त दो लड़कियां, दो यंग लड़कियां बाहर जा रही थी, उन्होंने चूहे को देखा और वो एकदम उछली जोर से सिक्योरिटी सिक्योरिटी कहके। अब उसके बाद जब वहां सिक्योरिटी कहके वो उछली और भागी, तो वहां तो लोग इतने कॉन्शियस होते हैं इसराइल एयरपोर्ट पे कि सारे लोग भागने लगे उसके आगे आगे, और सब सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी, फिर बाकी और कोई नहीं देख रहा क्या हुआ, मगर हम लोगों ने देखा कि वो चूहे साहब चले जा रहे हैं और सब लोग भाग रहे हैं। तो भागते भागते जरा पूरा लॉन्च भागता रहा, इन द मीन टाइम वो चूहे साहब कहीं किसी दरवाजे में दाखिल हुए और किसी ऑफिस में जाके गायब हो गए। बाद में पता चला क्या था कि कोई बम नहीं पता ना रास्ता, कोई धमाका नहीं हुआ था, वो चूहे साहब ने धमाका कर दिया था। और मुझे वही अंदाजा हुआ कि इतनी मजबूत कौम और इतनी सिक्योरिटी कॉन्शियस कौम और इतने ज्यादा ये होते हैं, और ये लोग मतलब ये नहीं इन जनरल, जैसे आप बता रही हैं व्हाइट हाउस का वाक्य कि वो डर गए चूहे से, एक वो क्या कहते हैं ये इजराइली कौम इतनी जनाब जिन्होंने पूरे मिलिट्रीज कंट्रोल किया हुआ है, उनका चूहे से देखकर पूरे एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई, और एक जैसे मालूम होता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी थोड़ी देर में। तो यही मैं कहता हूँ कि
और चूहा भी बड़ा बदकिस्मत था कि उसका सामना दो लड़कियों से हो गया।
जी जी जी, तो चूहे साहब बड़े आराम से सफर करते हुए, तो ये मेरे आंखों देखा हाल है। हम लोग 2014 में हम लोगों ने बैतुल मुकद्दस का सफर लिया था, बाकी सफर तो बहुत अच्छा गुजरा मगर इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। और वहां पे मैं उसकी फोटो, इतनी देर था कि मैं कैमरा मेरे पास था, फोन मेरे पास, मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता था, मगर वहाँ स्ट्रिक्टली लिखा हुआ नो फोटोग्राफी।
और आप लोगों को डेफिनेटली रोका भी गया था कि 22 में से 4 लोगों को सिक्योरिटी पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेशन थी, तो ऑफ कोर्स आप से कैमरा नहीं निकाल सके, मगर बहुत शुक्रिया एक बार इमाम भाई शेयर करने।
बस ये बताता हूँ ये लोग कितना मतलब
इमाम भाई ने जो बात बताई ना, वो उस पर एक मुझे लतीफा याद आया है।
इमाम भाई थैंक यू।
कि एक झिंगर जो होता है ना, झिंगर ही कहते हैं ना उसका, कॉकरोच जो है, वो बड़ा वाला कॉकरोच जो है ना, वो कहीं कोने में पड़ा हुआ था उल्टा। तो दूसरे झिंगर भी आए वहाँ पर, उसके पास कहने गए, यार आप यहाँ पर घंटे से नीचे लटे हुए हो और आपको चोट वोट तो कहीं नहीं लगी है, खैरियत तो है? कहने लगे क्या कहूँ मैं यार, बस वो इत्तेफाक से दो लड़कियां मेरे सामने से गुजर रही थी, उनको मुझे देखा और इतनी जोर से चीखा कि मुझे हार्ट अटैक हो गया। किसी ने नहीं मारा, मुझे हार्ट अटैक हो गया है और मैं यहाँ लेटा हुआ अपनी सांस सही कर लूं।
एक बार इमाम भाई थैंक यू वेरी मच। अमाजी भाई इट्स अ गुड वन। बिल्कुल साहब, उन चूहे उस बेचारे कॉकरोच को हार्ट अटैक हो गया था, क्योंकि ये चूहा भी तेल अवीव एयरपोर्ट पे जो था बेचारा, बड़ा बदकिस्मत।
हमारे पास टाइम बड़ा कम है मगर मैं इन कॉलर को जरूर लूंगा। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम भाई, क्या बात है, चूहा चूहा भेज रहे हैं।
हाँ जी फरमाइए, आपको क्या कहना है
शाहिद भाई?
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र।
अच्छा, ओ ये चूहे का तो नहीं है, जैसे उन्होंने तेल अवीव का वाकया सुनाया ना, इस तरह एक वाकया है। अर्ली 70 में, मिड 70 में लोग बाय रोड अफगानिस्तान से होते हुए इस जर्मनी से वेस्ट जर्मनी जाते थे, ठीक है। तो वो सारा ग्रुप गया वेस्ट जर्मनी से इस जर्मनी अपना ट्रेन के जरिए, जब स्टेशन से वो बाहर निकल रहे थे सब निकल गए, एक लास्ट में जो ना उसको रोक लिया उन्होंने, कहते हैं उसको क्वेश्चनिंग को करने के लिए, तो वो सबको कहते हैं आ जाओ भाई फड़े गए हैं। सब आ जाओ फड़े गए हैं, खुद वो पकड़ा गया तो उसने सबको
पकड़ा।
इसे कहते हैं हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच साहब। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज न्यूज़ कि व्हाइट हाउस में चूहा आ जाए, और आप इमेजिन कीजिएगा कि वेल इक्विप्ड रिपोर्टर्स यहाँ मौजूद हैं। नंबर एक वेल इक्विप्ड है, नंबर दो एवरी रिपोर्टर इज विद द टाई एंड विद द थ्री पीस में,
वेरी वेल ड्रेस्ड,
वेरी वेल ड्रेस्ड। और आप सोच वो भाग किसके पीछे रहे हैं, चूहे के पीछे?
नहीं, वो भाग पीछे चूहे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, चूहा इनके पीछे भाग रहा है। और वो डर
जो मर्जी कह ले, चूहा बेचारा, एंड देयर इज वन स्टेज जिसमें चूहा जो है ना, वो जो पोडियम है ना उसकी नीचे वाली जगह पे घुस गया।
चूहे ने आपको देखी नहीं उसमें, यूट्यूब पे उसकी तस्वीर आई हुई है, हाथ जोड़ा कह रहा है मैंने कुछ नहीं करता, मुझे माफ कर दो यार। मैंने क्या करना, मुझे माफ कर दो यार।
कहते हैं कि इस इवेंट ने ना सोशल मीडिया में इतनी हलचल बरपा कर दी कि एनबीसी रिपोर्टर जो हैं शैनन, उन्होंने ट्वीट किया द मोस्ट एक्साइटमेंट इन द व्हाइट हाउस ब्रीफिंग रूम इन द मंथ, यानी पूरे महीने में व्हाइट हाउस की रिपोर्टिंग में सबसे एक्साइटमेंट का वाकया। और सपोर्टर्स एंड वो कहते हैं प्रेसिडेंट क्विकली उन्होंने इस मामले में देखना भी शुरू कर दिया और पता करना शुरू कर दिया। बहरहाल
क्विकली जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई, मैं लतीफे भी बहुत है लेकिन मैं एक जरूरी बात आपसे करना चाहता हूँ।
जी
असल में मैं पिछले 10 दिनों से कॉल कर रहा था लेकिन आपसे कोई रब्ता नहीं हो पा रहा था। कल आपने गांधी साहब के कोई जो दामाद हैं या उनके शागिर्द हैं उनको बुलाया हुआ था,
जी।
तो मेरे कुछ कंसर्न है, आप जब भी गांधी साहब हो तो उनसे अगर पूछ सके,
इस तरह एनी चांस कि ही विल बी, जनाब गांधी साहब विल बी विद अस ऑन फ्राइडे।
जी मैं आपको बताता हूँ ना, पहले तो ये है कि उनकी कुछ क्लिप्स हैं जो कि वो हैं, वो कहते हैं कि जी जब आप आर्मी की कोई बात होती है तो आप उसको काटते हैं, कोई और बात होती है पाकिस्तान के वाले से तो आप उसका काल को काटते हैं, लेकिन ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو نبی پاک ہیں نعوذ باللہ, یہ ایک ان کی فروعی جو ہے وہ ختم نبوت تھی, اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ ان کا دین نہیں چینج ہوگا, لیکن ان کے بعد کئی نبی آئیں گے. اور کل انہوں نے وہ بھی جو لوگوں نے سوال و جواب کیے اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ تو حدیث جو ہے یہ کس سے کہانیاں ہیں اور یہ کسی سے آپ نے سنا ہوگا اور یہ ہوا, تو ہم اس کو کس طرح ثابت کریں کہ یہ صحیح جو ہے وہ حدیث ہیں یا نہیں. تو یہ تو ہمارا جتنا بھی اسلامک کنسیپٹ ہے اس سب کو انہوں نے جو ہے وہ تلوار سے اس کو گردن اتار دی, اور سارے کنسیپٹ کی نہ ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آخرت میں آنے کا جو ہے وہ اقرار کر رہے ہیں, اور نہ ہی امام مہدی کے آنے کا وہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ سب ایسی فضول باتیں, اور حدیثوں کا بھی وہ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے ان سے آرگومنٹس بھی کیے. بہرحال آپ کی مرضی ہے, آپ جو بھی کریں, لیکن میرا ایک کنسرن تھا, میں نے آپ تک پہنچایا کہ یہ اس طریقے سے ہم تو نبی پاک کے بارے میں اگر آپ اس طرح اپنے ریڈیو پہ نشر کریں گے تو یہ تو بڑی غلط بات ہوگی. کہ جی آپ گاندھی صاحب کا بے شک دیکھ لیں, ان کو لکھ لیں کہ یوٹیوب پہ کہ گاندھی احمدی اور قائدیانی, تو اس میں ایک دو آپ کو مل جائیں گے, آپ کو کلپس جس میں باقاعدگی طور پر کہتے ہیں کہ جی یہ ختم نبوت کا جو سلسلہ تھا یہ فروعی تھا, اس کے بعد کئی نبیوں نے آنا ہے لیکن ان کا جو شریعت ہے وہ چینج نہیں ہوگی. وہ تو یہ تو عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں, مطلب اب خود سوچیں کہ یہ اگر آپ اس نظریے کو یہاں پہ پروموٹ کر رہے ہیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن غالباً آپ بھی جو ہے نبی پاک کی توہین. اب آپ نے عمران خان صاحب کے بارے میں پچھلے دنوں کہا تھا کہ انہوں نے یو این میں تقریر کی ہے, انہوں نے نبی پاک کا جو ہے ایک پراپر ایک وہ ایک امیج پیش کیا ہے, تو اب آپ اس طرح کے لوگوں کو آپ جو ہے پروموٹ کریں گے تو میرے خیال میں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. باقی آپ کی مرضی ہے.
نہیں نہیں, اب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا, میں بالکل آپ سے بات کر. پہلی بات تو یہ کہ میں ذاتی طور پہ میرا یقین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ پہ دین مکمل ہوا, میں ذاتی طور پہ اس پہ یقین رکھتی ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اعمال کو صحیح رکھے اور مجھے بہتر جزا کی ریزلٹس کی میں خواہاں ہوں. یہ دنیا میرا عارضی ٹھکانہ ہے, اینڈ دا بیسٹ آئی ایم لکنگ فار از لائف آفٹر ڈیتھ. جہاں تک آپ نے یہ بات کی, گاندھی صاحب کو تشریف لانا تھا, ان کے سن ان لا اس وقت یہاں پہ آئے ہیں. الموارد انسٹیٹیوٹ ٹورنٹو میں قائم ہوا ہوا ہے, پر کہ پوری دنیا میں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا بھائی, دو طرح سے طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جو ہمارے نوٹس میں نہیں آتا اور اندر ہی اندر چیزیں بدل کے رہ جاتی ہیں, ایک وہ ہوتی ہے کہ انسان کے نوٹس میں ضرور ہو اور اس کے مطابق ہم اپنے ایکشن کو بدل سکیں, یا ہم اس کے مطابق اس کا تدارک کوئی کر سکیں. ٹھیک ہے, یہ میری تھاٹ ہے, آپ کا اگین اس سے متفق ہونا قطعاً ضروری نہیں ہے. نمبر ون. نمبر ٹو, جو کل ان کے بیٹے الیاس حسن ان کے سن ان لا یہاں پہ آئے تھے, فرائیڈے کو گاندھی صاحب کو خود تشریف لانا ہے. میں بالکل آپ کے کنسرن کو, میرے لیے بھی یہ سوچ ہے اور میں ڈیفینیٹلی اس کو ٹیبل کروں گی ضرور. گاندھی صاحب یہاں پہ آئے ہیں, انہوں نے لیکچر بھی دینا ہے, بے شمار لوگ ان کو فالو بھی کر رہے ہیں, مگر اگر ہم یہاں لے کے آئے, اٹ از ناٹ اے پیڈ کمرشل, نو ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے, پیڈ وہ ہوتا ہے, ایک سیکنڈ,
مطلب نہیں نہیں میں آپ نہیں ہوگا نظریہ, لیکن یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو علم نہ ہو, کیونکہ کل نہ ہی آپ تھے نہ ماجد بھائی.
جی میں آپ کو یہی ایکسپلین
کر, وہ نل کر رہے تھے کہ جی کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہے, یہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتی. قرآن تو دیکھیں, وہ مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ جی نماز روزے یہ سب کچھ پہلے سے تھے, تو قرآن کو کیا بتانے کی ضرورت تھی؟ ایسی باتیں نہیں ہیں.
نہیں نہیں, میں جو آپ سے بات, ایک سیکنڈ, مجھے آپ کی میں نے پہلے پوری بات سنی اور آپ کے بعد میرے بعد پھر آپ مکمل طور پہ بات کر لیجئے گا. تو یہ دس از ناٹ اے پیڈ کمرشل, یعنی آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو میک منی آن مائی ریلیجن, ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے, مسجدوں کے کمرشل چلتے ہیں, وی چارج دیم, فنڈ ریز کرتے ہیں, وی چارج دیم, مگر دس واز ناٹ, یہ ایونٹ تو ہونا ہی ہونا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مگر اس پلیٹ فارم پہ, یعنی ایک ہوتا ہے کہ میری اور آپ کی لا علمی میں کوئی چیز اسپریڈ ہو رہی ہے, مجھے اور آپ کو علم ہے, ہم نے اس میں اپنے آپ کو, یا کس طرح سے آپ نے اپنا اگلے کوشچن کرنا ہے, ہم گفتگو سے کسی کو کنونس کر سکتے ہیں, مگر جس نے جو کرنا ہے اس نے وہ کرنا. میرا, مجھے جتنی ابھی تک کی ملاقات لگی, مجھے اس میں جدید اسلام اور پرانے اسلام کی بات لگی کہ جدید اصلاحات کیا ہیں, حالانکہ تعالیٰ کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو آج سے 1400 سال پہلے بھی یہی کتاب تھی, آج 1400 سال کے بعد بھی وہی کتاب ہے. نطفے کا ذکر 1400 سال پہلے بھی کیا گیا تھا, ریسرچ کے بیچ میں یہ چیزیں بعد میں سامنے آئیں, آج بھی وہ ثابت ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. میک لانگ اسٹوری شارٹ, اٹ واز ناٹ اے پیڈ کمرشل. فرائیڈے کو غامدی صاحب یہاں پہ موجود ہوں گے, یقیناً آپ کے لیے لائنز بھی ہم اوپن کریں گے, یو کین آسک دس کوسچن. مگر میں نے کل کے پروگرام میں اگر کوئی چیز لرن کی تھی, آئی لسن ٹو دیٹ, آئی واچ دس پروگرام, میری جہاں پہ بھی میٹنگ تھی اس کے باوجود میں نے اس پروگرام کو واچ کیا تھا. ایک چیز میں نے ضرور سیکھی تھی کہ ہم گفت و شنید سے کسی کو کنونس کر سکتے ہیں, نمبر ون. نمبر ٹو, اگر کل میں نے بڑی پیاری بات سنی کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی نام سے پکارنا چاہتا ہو, مثال کے طور پہ انہوں نے کرسچنز کے بارے میں ذکر کیا کہ بہت سے لوگ ان کو وہ نام دیتے ہیں جو وہ نہیں چاہتے, وہ اپنے آپ کو مسیحی کہلوانا چاہتے ہیں, تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے میں ایک شخص کو مسیحی کہہ دوں؟ میں اپنے اعمال کے لیے دیندار ہوں, میں اپنے اعمال کے حساب پہ میرے لیے جنت اور دوزخ کا انتخاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریں گے, وہ میرے اعمال ہوں گے. ماجد بھائی کی نمازیں اور ماجد بھائی کی جو پائسنس ہے وہ میری جنت کا باعث نہیں بن سکے گی, یا ایون میری والدہ کی کا سید ہونا یا میری والدہ کا خاندان میری بخشش کا باعث نہیں بن سکے گا. یہ میرے اعمال ہیں جو مجھے جنت اور دوزخ کی طرف لے کر کے جائیں گے. آپ کا ایک چیز مجھے جہاں تک لگتی ہے جو بھی آپ نے کہی ہے, اٹس اے ریڈ الرٹ فار می, جہاں تک میں اس الیاس حسن کو جو میں ملی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ مجھے اس کا پورا یقین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات تشکیل کی گئی, وجود میں آئی, یہ میری ان سے بات بھی ہوئی ہے, اس پہ ان کا یقین ہے. آپ نے بھی جو بات کہی ہے کہ ان کا ختم نبوت پہ یقین نہیں ہے, دیٹ از کنسرن ٹو می. ایک چیز
میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ آپ یوٹیوب پہ, اگر مجھے معلوم نہیں تھا, مجھے دو, میں نے جب ان کی بڑی تعریف کی تو مجھے ایک دوست نے بتایا, پھر اس کے بعد میں نے خود سنا یوٹیوب پہ, اس کے بعد میں آپ کو کمیونیکیٹ.
نہیں, فرائیڈے کو انشاءاللہ وی ول آسک دس کوسچن.
میں اصل میں چونکہ کام پہ ہوتا ہوں تو آئی لیو ایٹ 5 دین آئی ڈرائیو, تو آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ ان کے,
میں آپ کا کوسچن آئی ول ڈیفینیٹلی گو وتھ دس کوسچن, آئی ول ڈیفینیٹلی,
میں آپ کو میسج کر دوں گا اس ڈیٹ کا کہ جس ڈیٹ کا ان کا کلپ ہے, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ خود بھی سن لیجیے گا تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا.
نہیں سر, آپ نے بہت شکریہ.
جی بہت شکریہ,
بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. آئی ول ڈیفینیٹلی آسک دس کوسچن. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اعمال کو آئے, دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وجود میں آئی تھی, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں نے تا قیامت وجود میں آنا ہے ان کا ظہور بھی تبھی ہو گیا تھا ان کی روحوں کا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دنیا تشکیل دینی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آخری نبی ہیں, اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدھے رستے پہ اور صحیح سوچ کے قابل کر سکے. آمین سم آمین. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو اینی کانٹروورشل اسٹف. امریکہ کی طرف ایک بار پھر لے کے چلنا چاہتی ہوں, مگر اس سے پہلے دو ایک اسپانسر کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر غزالہ زید بھائی, اگر دانتوں میں تکلیف ہے تو آپ ڈاکٹر غزالہ زید سے ایک دفعہ ملاقات تو کر کے دیکھیں. یہ لارنس اینڈ مارکم کے نارتھ ایسٹ کارنر میں سیڈر بریک کلینک ہے, لیٹسٹ ڈینٹسٹری. چاہے آپ نے اپنے بچوں کے دانت ٹیڑھے ہیں یا بچوں کا تالو اونچا ہے, ڈاکٹر غزالہ زید لیٹسٹ ڈینٹسٹری میں, کاسمیٹک ڈینٹسٹری میں اسٹیٹ آف دا آرٹ کلینک ہے ان کا, اور ان کا نمبر 4169451000. آپ کے ہاں آپ کے پاس ڈینٹل انشورنس ہے یا نہیں بھی ہے تو آپ ایک دفعہ ان سے ملاقات کیجیے, 4169451000. ہمارے آج کے پروگرام کو سباقت بینکویٹ ہال نے تعاون دیا ہے. بھائی شادیاں بھی سب گھروں میں ہوتی ہیں, 18th برتھ ڈے بھی ہوتا ہے, 16th برتھ ڈے بھی ہوتا ہے, کمیونٹی ایونٹس بھی ہوتے ہیں, آپ کا کوئی پروڈکٹ لانچ بھی ہو سکتی ہے. سواگت بینکویٹ ہال, سب سے پہلے تو اس کو رن کرتے ہیں ہمارے شاہ جی. شاہ جی جو کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی سروسز میں رہے ہیں, اگر آپ افورڈیبل بینکویٹ ہال کی تلاش میں ہیں تو اجاز شاہ صاحب سے رابطہ کیجیے گا. سواگت بینکویٹ ہال بڑا ہے, خوبصورت ہے, ایلیگنٹ ہے, ماڈرن میٹنگ اینڈ ریسیپشن سینٹرز ہیں, परफेक्ट प्लेस है किसी भी वेडिंग एनिवर्सरी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के लिए या फिर कोई कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं. 100% हलाल फूड है. मैं बल्कि इसको कभी एम्फसाइज ही नहीं किया. केटरिंग की सहूलत 500 तक लोगों की है और पार्किंग बेशुमार है. स्वागत बैंकुट हॉल 9058219688. एक गीत की तरफ भी लेकर के बढ़ना चाहती हूँ. पाकिस्तान के जो एक किरदार हैं वहीद मुराद, चॉकलेटी हीरो के नाम उनका दिया जाता है. 1960 से लेकर 1970 की दहाइयों में उनका ज़माना उनको करार दिया जा सकता है, यानी ये 10 साल 60 से 70 अराउंड 11 years. आज गूगल ने सर्च एंगल जो है उन्होंने उन्हें खिराज तहसीन पेश किया है, बल्कि गूगल ने वहीद मुराद पे ये किया हुआ है. और समाजी रबते की वेबसाइट ट्विटर भी आज वहीद मुराद टॉप ट्रेंड किए जा रहे हैं. 2006 में वहीद मुराद के फिल्मी सफ़र पर कुछ है. कहते हैं कराची में वहीद मुराद के वालिद निसार मुराद उनका नाम था, कराची में कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर थे. 1962 में वहीद मुराद ने कराची यूनिवर्सिटी से एम ए इंग्लिश किया. वेरी एजुकेटेड एक्टर थे. और इनके वालिद जो थे निसार मुराद, उन्होंने कारोबार में शरीक कर लिया उन्हें. और अपनी इनके वालिद ने अपनी पहली फिल्म औलाद का आगाज़ किया. इस और फिल्म के डायरेक्टर एस एम यूसुफ थे. अदाकारों में नैयर सुल्ताना, दर्पण भी शामिल थे. वहीद मुराद ने इस फिल्म में, यानी ये फिल्म जो थी औलाद फिल्म का नाम था, और फिल्म में वहीद मुराद ने अपना एक रोल भी अदा किया. लेकिन इनकी अदाकारी के असल जौहर तब खुले जब उनके दोस्त परवेज मलिक अमेरिका से फिल्म साजी का डिप्लोमा लेकर लौटे थे. अमेरिका से उन्होंने डायरेक्शन का डिप्लोमा लिया था और उन्होंने वहीद मुराद को फिल्म हीरा और पत्थर की हिदायतकारी के फ़राइज संभाल लिए. हीरा और पत्थर में वहीद मुराद ने एक गधा गाड़ी वाले का किरदार अदा किया, एक गधा गाड़ी वाला जो कि जेबा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है. इस फिल्म को बड़ी कामयाबी मिली, हीरा और पत्थर को. और वहीद मुराद को 1964 में बेहतरीन अदाकार का निगार अवार्ड भी मिल गया. अपने वालिद की बदौलत 20 साल की उम्र में वहीद मुराद फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए और अपने 23 साल की उम्र में हीरो की शोहरत का मज़ा चख चुके थे, यानी हीरा और पत्थर. 28 साल की उम्र में उन्हें पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म की कहानीकार, हीरो और प्रोड्यूसर होने का एजाज़ मिल गया था. 28 में आप इमेजिन देखिए, ये है दुनिया. इंसान आया, उसने दुनिया को देखा, कॉन्कर किया और देखिए फिर 11 साल में ही ये अरूज जो था वो इंतहा पे पहुंचा. बेशुमार लोग वहीद मुराद को फॉलो करते थे. यानी मेरा ख्याल है जो शोहरत सोशल मीडिया ना होने के बावजूद जनाब वहीद मुराद को मिली, किसी को नसीब ना हुई. वहाद हीरो थे जिन्होंने उस जमाने में जब कोई सोशल मीडिया नहीं था बाकायदा फैन क्लब तश्कील दिए थे. बाद में वहीद मुराद और परवेज मलिक, सुहेल राणा और गीत निगार मसरूर अनवर की एक टीम तैयार हो गई जिसने बेशुमार कामयाबी. 4 लोग थे जनाब. सुहेल राणा साहब तो यहीं टोरंटो में होते हैं, परवेज मलिक थे और मसरूर अनवर. इनकी अपनी फिल्म थी, फिल्म आर्ट्स के बैनर तले 1966 में इन्होंने फिल्म बनाई थी अरमान. आइए एक गीत सुनाती हूँ और अरमान से ही मैं एक गीत पेश करती हूँ और फिर हम वहीद मुराद के जवाल की तरफ भी चलेंगे. दिस इज़ टू शॉर्ट टू बिलीव. इंसान अरूज पे जाता है और हर अरूज का एक जवाल है. अल्लाह जिसको चाहे बादशाहत दे, जिसको चाहे फ़कीरी दे, जिसको चाहे अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त दे और जिसको चाहे अल्लाह तबारक व तआला ज़िल्लत दे. जिसको चाहे अल्लाह तबारक व तआला समझ और सवाबदीद अदा करें और जिसको अल्लाह चाहते हैं उसके दिमाग को माउफ कर देते हैं और वो अकल से आरी हो के जंगल की तरफ निकल जाता है.
अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे. अकेले न जाना, हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे. अकेले न जाना.
सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे अकेले न जाना सोच लेना बिछड़ के जमाने से पाया है तुमको कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना यही है तमन्ना यही इल्तिजा है और इसके सिवा हम
जी साहब अहमद रशीद साहब की आवाज़ में फिल्म अरमान से ये गीत आपने समाप्त फरमाया और चलिए साहब एक ज्वेलरी ऑक्शन होने जा रहा है यहाँ पर एंड इस ज्वेलरी ऑक्शन में कहाँ होगा कब होगा कैसे होगा मैंने बात की जनाब सलमान खान साहब से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑक्शन के एंड उनसे क्या बातचीत हुई मेरी आइए समाप्त फरमाते हैं सामिन इकराम स्पेशल ब्राइडल ज्वेलरी ऑक्शन इन मिसिसागा होने जा रहा है इसके बारे में आपसे कुछ बातचीत करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन लेट मी ब्रिंग यू अ वेरी स्पेशल न्यूज व्हिच विल मेक दिस कमिंग फॉल सीजन इवन मोर एक्साइटिंग आवर गुड फ्रेंड्स एट फेडरल ऑक्शन सर्विस आर ब्रिंगिंग अ वेरी स्पेशल ब्राइडल ज्वेलरी ऑक्शन दिस संडे कमिंग संडे होने जा रहा है ये वेयर दे विल बी ऑक्शनिंग ऑफ सम रेयर एंड ब्यूटिफुल आइटम्स ऑफ ज्वेलरी इंक्लूडिंग 1-4 carat डायमंड एंगेजमेंट रिंग्स 22 carat गोल्ड ज्वेलरी एंड ब्यूटिफुल सेट्स ऑफ रूबी एंड एमरल्ड्स कहते हैं कि गॉन आर दोज डेज व्हेन वी हैड नो चॉइस बट टू बाय फ्रॉम रिटेल एट फुल प्राइस देख लें रोलेक्स वॉचेस वेयर द बिडिंग विल स्टार्ट रफली 70% बिलो रिटेल टुडे हमने इनवाइट किया है ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेडरल ऑक्शन सर्विस मिस्टर सलमान खान सलमान वेलकम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे टू डिस्कस अबाउट दिस संडेज बिग ऑक्शन
Majid bhai, thank you very much for inviting me to your show. It's always a pleasure to be with you and share this important community news. Jaisa aapne kaha ki isi Sunday ye bahut bada auction ho raha hai. Aur iski khasiyat ye hai ki ye bridal jewelry auction hai. So abhi bhi mausam acha hai, bahut khoob shaadiyan ho rahi hain aur engagements ho rahi hain aur aage bahut sari agle saal ke liye plan ho rahi hain. So I think this is a golden opportunity for people who have weddings coming up in their own family ya unke apne फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के यहाँ इंगेजमेंट्स और वेडिंग्स प्लान हैं बिकॉज ये बहुत ही स्पेशल ऑक्शन है इस पर हम तकरीबन 200 से ज़्यादा खूबसूरत ज्वेलरी आइटम्स लेके आ रहे हैं और ये लोगों की पुरजोर फरमाइश पे और इसरार पे ये ऑक्शन दोबारा किया जा रहा है बिकॉज साल में हम लोग बमुश्किल एक या दो ऑक्शन ही कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है बिकॉज एक ऑक्शन पुट अप करने में बहुत वक्त लगता है बहुत मेहनत लगती है वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो भी आइटम्स यहाँ गहने और ख़ूबसूरत कीमती जवाहरात और घड़ियाँ वगैरह लेके आ रहे हैं दे हैव टू बी certified. They are all authentic items coming from various sources. So उन सबको verify करने में appraisals, certificates वगैरह करने में and then planning a date. It takes a lot of time and a lot of effort. Many people don't understand, but हमें कम से कम उसमें 6-8 हफ्ते की मेहनत और तैयारी लगती है in order to bring and organize an auction in a major city like Mississauga. So, आपका फिर से शुक्रिया अदा करूंगा आज आपने मुझे बुलाया. आई एम रियली हैप्पी टू शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन एट योर शो.
अब ये बताएं मुझे सलमान कि क्या बिग एडवांटेज है फॉर बाइंग ब्राइडल ज्वेलरी फ्रॉम योर ऑक्शन. इज इट चीपर देन द रिटेल?
माजू भाई बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है आपका. इसका जवाब इस तरह दूंगा कि हम बहुत ही लकी हैं कि हम टोरंटो में रहते हैं. यहाँ दुनिया के सभी बड़े ब्रांड्स के आउटलेट्स मौजूद हैं. आप बड़े मॉल्स में चले जाएं या आप ब्लोड स्ट्रीट पे चले जाएं, यू विल सी रोलेक्स स्टोर, यू सी टिफनी स्टोर और बर्क्स और बड़े बड़े ज्वेलरी के ब्रांड्स हैं यहाँ पे. कार्टियर का स्टोर है. सो आई एम श्योर जो लोग ज्वेलरी में और वॉचेस में दिलचस्पी रखते हैं दे आर अवेयर कि ये जो कीमती आइटम्स हैं, ये ज्वेलरी और ये वॉचेस हैं, इनकी प्राइसेस क्या हैं, इनके मॉडल्स क्या हैं, इनका स्टाइल क्या चल रहा है और ये इनकी कीमतें वगैरह रिटेल पे कहाँ से शुरू होती हैं. पीपल नो दैट. तो एडवांटेज की आपने बात की, उसका मैं इस तरह कहूँगा कि बिकॉज वी आर अवेयर एंड बिकॉज वी आर इन लकी टू बी लिविंग इन सच अमेजिंग सिटी, यहाँ पे हमारे लिए बहुत आसान है. ऑनलाइन जाके भी आप देख सकते हैं और आप फिजिकली भी जाके देख